बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा प्यार भरा अभिवादन। श्रोताओं, कैसे हैं आप? हमें पूरा विश्वास है कि आप सब परमेश्वर के अनुग्रह से ठीक हैं और हमारे साथ आज के इस बाइबल अध्ययन में सम्मिलित होने के लिए तैयार हैं। इन दिनों हम अपने इस कार्यक्रम के अंतर्गत पवित्र शास्त्र बाइबल की अंतिम पुस्तक प्रकाशित वाक्य का विस्तार से अध्ययन कर रहे हैं और हम आशा करते हैं कि ये अध्ययन आपके जीवन के लिए लाभकारी सिद्ध हो रहा है। तो आइए, इससे पहले कि आज के प्रवचन को हम सुने, मन की तैयारी के लिए सुनते हैं एक मधुर गीत।
उतरा 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 रूहे पा उतरा, खुशी से भर दे मुझको, आसमानी खुशी से भर दे मुझको, एक नया दिल मिला, चश्मा बनके उछला।
Oh,
पानी रोटी मुझको खिला दे, कमजोर दिल को तगड़ा बना दे, भरपूर करके रजा, भरपूर करके रजा। आसमानी रोटी मुझको खिला दे, भरपूर करके रजा।
सत्यवचन बाइबल अध्ययन कार्यक्रम में भाग लेने वाले सभी श्रोता भाई बहनों को सत्यवचन टीम की ओर से हार्दिक अभिनंदन। आशा है आप प्रभु की कृपा से कुशल हैं और आज के बाइबल अध्ययन कार्यक्रम में भाग लेने के लिए तैयार हैं। जैसा कि आपको ज्ञात है कि इन दिनों हम नए नियम से प्रकाशित वाक्य की पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं। पिछले बाइबल अध्ययन कार्यक्रम में हमने इसके छठे अध्याय को देखा, आज हम सातवें अध्याय को प्रारंभ करते हैं। सातवें अध्याय का शीर्षक है, परमेश्वर महाक्लेश काल में इसराइल के बचे हुओं पर मोहर लगाता है तथा अन्य जातियों में से एक विशाल जनसमूह को बचाता है। मित्रवर, इसी विषय को लेकर हम आज के बाइबल अध्ययन कार्यक्रम को प्रारंभ करेंगे, किंतु इससे पूर्व कि हम अपने बाइबल अध्ययन कार्यक्रम में आगे बढ़ें, अपने मनों की तैयारी और आत्मिक सहायता के लिए प्रभु परमेश्वर से सामर्थ मांगें, हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान जीवित और सच्चे परमेश्वर पिता, हम बड़ी दीनता के साथ आपके चरणों में आते हैं और आपको धन्यवाद देते हैं इस जीवन के लिए और इस सुंदर क्षण के लिए जो आपने हमारे व्यस्त जीवन में हमको दिया है कि हम आपके पवित्र वचन का अध्ययन कर सकें और आपके महान भेदों को जान सकें। प्रभु जी, हमारी प्रार्थना है कि आप अपने भेदों को समझने के लिए हमें बुद्धि प्रदान करने की कृपा करें, पवित्र आत्मा के द्वारा हमें सिखाएं और अपने वचन को हमारे लिए सत्य बना दें ताकि हम उस पर विश्वास कर सकें। हमारे मध्य में यदि कोई श्रोता भाई बहन किसी रोग से पीड़ित है, किसी गंभीर समस्या में उलझा हुआ है या किसी घोर पाप में फंसा हुआ है, प्रभु आप उसका छुटकारा करें, हमारी प्रार्थना को ग्रहण कर लें, क्योंकि हम ये प्रार्थना आपके प्रिय पुत्र अपने जीवित उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हाँ तो मित्र, आइए अपने कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। जैसे कि हमने आपको बताया कि हम प्रकाशित वाक्य की पुस्तक के सातवें अध्याय के अध्ययन को प्रारंभ कर रहे हैं। सर्वप्रथम हम इस अध्याय का परिचय आप तक पहुंचाना चाहते हैं, हम इस अध्याय से आपको परिचित कराना चाहते हैं। मित्रवर, पाठकों द्वारा प्रकाशित वाक्य की पुस्तक पर कठिन होने की मोहर लगा दी गई है। पाठक कहते हैं कि ये पुस्तक बड़ी कठिन है, किंतु मेरा ये व्यक्तिगत अनुभव है कि यह पुस्तक बड़ी तर्कसंगत है और ऐसे सरल ढंग से विभाजित की गई है जिसे कोई भी पाठक छोड़ नहीं सकता, अर्थात चूकने की कोई संभावना ही नहीं है। यदि हम किसी अनुच्छेद में फंस जाते हैं और संकेतों को लेने का प्रयास करते हैं और अपनी इच्छा और सुविधावाद धारणा के अनुसार उनको ठीक वैसा ही बैठाना चाहते हैं, तो हम वास्तव में कठिन परिस्थिति में फंस सकते हैं। इसकी अपेक्षा ये उत्तम होगा कि जैसा प्रेरित यूहन्ना बताते हैं हम वैसा ही करें, जिससे कि हम उनके साथ चलते रहें। अब हम पुस्तक के उस खंड में हैं जिसे प्रभु यीशु मसीह ने महाक्लेश का नाम दिया है। ये काल तब तक प्रारंभ होगा जब मसीह की कलीसिया अर्थात परमेश्वर का घराना पृथ्वी पर से हटा लिया जाएगा। ये काल तभी ही प्रारंभ होगा और प्रभु यीशु मसीह के साथ जब कलीसिया स्वर्ग में होगी। मेरे मित्र, मैं पाठकों को स्मरण दिला दूं कि हमें प्रकाशित वाक्य की पुस्तक को समझने के लिए पवित्र बाइबल की 65 अन्य पुस्तकों को भी पढ़ना आवश्यक है। प्रेरित यूहन्ना अब महाक्लेश काल को विस्तार से बताने जा रहे हैं। इस काल के विषय में मत्ती रचित सुसमाचार के 24वें और 25वें अध्यायों में भी हमको बताया गया है, और इन अध्यायों के अतिरिक्त पवित्र बाइबल में किसी अन्य स्थान पर इतने विस्तार से नहीं बताया गया। प्रेरित यूहन्ना हमें कुछ और भी जानकारी दे रहे हैं, किंतु जो कुछ वह बता रहे हैं वह उसी पर आधारित है जो प्रभु यीशु मसीह को कहना है। वह अपनी ओर से कुछ नहीं जोड़ रहे हैं। अध्याय 6 में हमने 7 मोहरों के खोले जाने के विषय में अध्ययन किया। वास्तव में हमने 7 नहीं वरन 6 मोहरों के विषय में अध्ययन किया है। 6 मोहरों ने 6 गंभीर त्रासदियों को प्रकट किया है जो इस पृथ्वी पर आने वाली हैं। 5वीं मोहर ने हमें शहीदों की मंडली और महासिंहासन से परिचित कराया। 6वीं मोहर ने हमें उस विपत्ति के विषय में बताया जो परमेश्वरहीन और परमेश्वर विरोधियों को महाक्लेश काल में झेलनी है। इस काल में अर्थात महाक्लेश काल में कलीसिया को इसके नाम से संबोधित नहीं किया गया है, क्योंकि यूहन्ना पृथ्वी पर की घटनाओं का लेखा दे रहे हैं, वो स्वर्ग की घटनाओं का लेखा नहीं दे रहे हैं। श्रोता, प्रेरित यूहन्ना से कहा गया कि तू उन बातों को लिख जो तूने देखी हैं। उसने महिमान्वित प्रभु यीशु मसीह का दर्शन देखा, तब उसको वे बातें लिखनी थीं जिन्हें वह देख रहा है। मित्रवर, यूहन्ना कलीसिया के युग में था और आज हम भी उसी युग में हैं, और चूंकि कलीसिया आज वर्तमान युग में भी इस पृथ्वी पर है, तो हम उस युग में हैं जिसके लिए प्रभु ने कहा, जिन बातों को तू देख रहा है। हम दूसरे व तीसरे अध्याय में इन बातों का अध्ययन कर चुके हैं। 4थे और 5वें अध्याय में हमने कलीसिया को स्वर्ग में देखा है। ये कलीसिया की भविष्य की स्थिति है। हम 4थे अध्याय से उन्हीं बातों का अध्ययन कर रहे हैं। अध्याय 6 से हम महाक्लेश काल के विषय में अध्ययन कर रहे हैं, किंतु कलीसिया इसका अनुभव नहीं करेगी। कलीसिया इससे पूर्व पृथ्वी पर से हटा ली जाएगी। श्रोता, ये 7 मोहरें 7 वर्ष के युग का चित्र प्रस्तुत करती हैं। अंतिम व 7वीं मोहर अंतिम 3.5 वर्ष के काल महाक्लेश का चित्र दर्शाती है। इस समय तक इस पृथ्वी की 1/4 जनसंख्या मृत्यु दंड द्वारा नाश हो चुकी होगी। अब हम उस प्रश्न के साथ व्यवहार करेंगे जिसे कोई भी समझदार व्यक्ति उठा सकता है। प्रश्न है, महाक्लेश काल में जो लोग परमेश्वर की ओर मन फिराएंगे और मुक्ति प्राप्त करेंगे, उनके विषय में आप क्या कहेंगे? ये कैसे संभव होगा? क्योंकि मन फिराने का कार्य तो पवित्र आत्मा द्वारा ही किया जाता है। मित्रवर, इस प्रश्न के हल के लिए हमें दूसरा थिस्सलुनीकियों उसके दूसरे अध्याय के 7वें पद को देखना होगा, जहां पर इस प्रकार से बताया गया है क्योंकि अधर्म का रहस्य अभी भी कार्यशील है। जब तक रोकने वाला हटाना दिया जाए तब तक वह उसे रोके रहेगा। इस पद में हमको बताया गया है कि कोई रोकने वाला है। हमें इस पद को गहन रूप से समझना है। यहां पवित्र आत्मा को रोकने वाले के नाम से पुकारा गया है। पवित्र आत्मा कलीसिया को प्रभु के सामने प्रस्तुत करेगा। अब चूंकि पवित्र आत्मा के बिना मन फिराव संभव नहीं, तो क्या पवित्र आत्मा की अनुपस्थिति में लोग उद्धार प्राप्त करेंगे? ये हमारा प्रश्न है। मेरे मित्र, पवित्र आत्मा महाक्लेश काल में भी पृथ्वी पर उपस्थित होगा। मैंने ऐसा नहीं कहा कि पवित्र आत्मा पूर्णतः संसार को छोड़ देगा, किंतु वह अब रोकने वाली सेवा नहीं करेगा। अब उसकी सेवा परिवर्तित हो जाएगी। मित्रवर, पवित्र आत्मा वास्तव में पवित्र आत्मा की एक ही सेवा नहीं, वरन अनेक सेवाएं हैं। उनमें से एक सेवा बुराई पर नियंत्रण रखने की है। पवित्र आत्मा पिंतेकुस्त के दिन से एक विशिष्ट प्रकार की सेवा प्रारंभ करता है। ये सेवा है विश्वासियों के समूह को एकत्रित करना, उसे इकट्ठा करना। इस विशेष समूह को मसीह का बदन कहा गया है। भिन्न भिन्न देशों से, भिन्न भिन्न भाषाओं से, भिन्न भिन्न जातियों से पवित्र आत्मा प्रभु यीशु मसीह के विश्वासियों को एक स्थान पर इकट्ठा करता है और इस विशेष समूह को मसीह का बदन अर्थात कलीसिया कहा जाता है। इस पृथ्वी पर हम मसीह के इस बदन को, इस समूह को कलीसिया के नाम से जानते हैं। और जब कलीसिया पृथ्वी पर से हटा ली जाएगी, ये विशिष्ट सेवा भी समाप्त हो जाएगी। इस विशेष युग में पवित्र आत्मा की सेवाओं में से एक मुख्य सेवा है बुराई को रोकने की सेवा, और ये वास्तव में अत्यंत महत्वपूर्ण सेवा है, वरन अनिवार्य कहें तो अधिक उचित होगा। सुसमाचार को लोगों के हृदय तक पहुंचाने और उसे वास्तविक बनाने के लिए बुराई को रोकने की सेवा अनिवार्य है। हम जानते हैं कि शैतान सबसे अधिक किसी का विरोध करता है तो वो है परमेश्वर के अनुग्रह के सुसमाचार का विरोध। शैतान सबसे अधिक परमेश्वर के अनुग्रह के सुसमाचार का विरोध करता है। शैतान द्वारा शासित व नियंत्रित संसार में पवित्र आत्मा द्वारा अधर्म अर्थात बुराई को रोकने की सेवा अत्यंत महत्वपूर्ण और अनिवार्य है। जब तक पवित्र आत्मा बुराई को ना रोके, परमेश्वर का वचन कैसे आगे बढ़ सकता है? मेरा स्वयं का अनुभव है कि शैतान किस प्रकार परमेश्वर के अनुग्रह को संसार में पहुंचाने के कार्य में कैसी कैसी बाधाएं उत्पन्न करता है। मेरा विश्वास कीजिए, यदि रोकने वाला ना रोके तो हम कब के दृश्य में से हट गए होते। अब प्रश्न ये है, यदि महाक्लेश काल में पवित्र आत्मा बुराई को रोकने की सेवा नहीं करेगा तो इस काल में लोग पाप के दंड से कैसे बचाए जाएंगे, उनका उद्धार कैसे होगा? मित्रों, महाक्लेश काल शैतान का अवकाश दिवस होगा। ये वो काल होगा जब वह अपनी मनमानी करने के लिए स्वतंत्र होगा, और हम देखेंगे कि परमेश्वर उसे ऐसा करने की छूट और अनुमति दे देगा। किंतु क्यों देगा, ये भी एक गंभीर प्रश्न है। मित्रों, ये परमेश्वर को अस्वीकार करने वाले संसार के विरुद्ध दंड का समय होगा। ये परमेश्वर के विरोधियों के लिए दंड का समय होगा। ये उन हठीले और दुष्ट पापियों के लिए दंड का समय होगा जिन्होंने परमेश्वर को अस्वीकार कर दिया, उसकी ओर से पूर्ण रूप से पीठ फेर ली। तब ऐसी दशा में इस संसार में से क्या कोई उद्धार प्राप्त कर सकता है? मेरे मित्र, मेरा विश्वास है कि इन अंतिम 7 वर्षों में बचने वालों की संख्या एक बड़ी संख्या होगी। जिस प्रकार पवित्र आत्मा पिंतेकुस्त के दिन से पूर्व भी इस संसार में उपस्थित था, उसी प्रकार कलीसिया के मेगा रोहण के पश्चात भी वो पृथ्वी पर उपस्थित रहेगा। हम पुराने नियम में स्पष्ट रूप से पाते हैं कि परमेश्वर का आत्मा लोगों के हृदयों में कार्य करता था। वह स्त्री और पुरुषों के हृदय को छूता था और उनमें परमेश्वर का भय उत्पन्न करता था, और अनेक लोगों की भीड़ परमेश्वर के समीप लाई गई। ये वो समय था जब लोग परमेश्वर को नहीं जानते थे, अज्ञानता की दशा में था मनुष्य, और उस समय परमेश्वर का आत्मा मनुष्य के हृदय में कार्य करता था। एक बड़ी भीड़ परमेश्वर के समीप लाई गई, किंतु परमेश्वर का आत्मा पुराने नियम में बुराई को रोकने की सेवा नहीं करता था, और ना वह लोगों को कलीसिया में सम्मिलित करने की सेवा करता था। वह पवित्र आत्मा के बपतिस्मे की सेवा नहीं कर रहा था, किंतु आज वह इस सेवा को कर रहा है। किंतु वह सेवा समाप्त होगी, पवित्र आत्मा की यह सेवा भी समाप्त होगी। हम देखते हैं कि परमेश्वर का आत्मा आज भी लोगों को मसीह के समीप लाने में लगा हुआ है। वह परमेश्वर की सृष्टि को परमेश्वर के समीप लाने में तथा उसे नया बनाने में निरंतर व्यस्त है। उत्पत्ति प्रथम अध्याय दूसरे पद के अनुसार परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। श्रोता, परमेश्वर का आत्मा आज भी पृथ्वी पर मंडराता है। वह कलीसिया के बादलों पर उठाए जाने के पश्चात भी मंडराता रहेगा, किंतु उसकी सेवा भिन्न होगी। उस समय उसकी सेवा बदल जाएगी। महाक्लेश काल में उसके पास एक असामान्य व विशिष्ट प्रकार की सेवा होगी। ध्यान दें, यहां सातवें अध्याय में यूहन्ना उस विशिष्ट सेवा के विषय में बताने जा रहा है जो पवित्र आत्मा उस महाक्लेश काल में करेगा। सो आइए प्रकाशित वाक्य की पुस्तक के सातवें अध्याय को हम प्रारंभ करते हैं। सर्वप्रथम हम ये देखें कि इस अवकाश का क्या कारण है। छठी और सातवीं मोहर के खोले जाने के मध्य इस अवकाश का कारण हमें इस अध्याय के प्रथम तीन पदों में बताया गया है। आप हमारे साथ देखें प्रकाशित वाक्य सातवां अध्याय एक से तीन पद। इन पदों में लिखा है, इसके पश्चात मैंने चार स्वर्गदूतों को पृथ्वी के चार कोनों पर खड़े देखा, जो पृथ्वी की चारों हवाओं को थामे हुए थे कि पृथ्वी, समुद्र अथवा किसी वृक्ष पर हवा ना चले। फिर मैंने एक और स्वर्गदूत को जीवित परमेश्वर की मुहर लिए हुए पूर्व से ऊपर आते देखा। उसने उन चारों स्वर्गदूतों से, जिन्हें पृथ्वी और समुद्र को हानि पहुंचाने का अधिकार दिया गया था, ऊंची आवाज से पुकार कर कहा, जब तक हम अपने परमेश्वर के दासों के माथों पर मुहर न लगा लें, तब तक पृथ्वी, समुद्र या वृक्षों को हानि न पहुंचाना। श्रोता, प्रथम पद में हमने पढ़ा इसके पश्चात से तात्पर्य है छठवीं मोहर के खोले जाने के दृश्य के पश्चात, और ये वाक्यांश उस भयानक दंड की ओर संकेत करता है जिसके विषय में हम अध्याय 6 में पढ़ चुके हैं, और तब यूहन्ना उसका विस्तार हमारे सामने रखता है। इसके पश्चात मैंने चार स्वर्गदूतों को पृथ्वी के चार कोनों पर खड़े देखा, जो पृथ्वी की चारों हवाओं को थामे हुए थे कि पृथ्वी, समुद्र अथवा किसी वृक्ष पर हवा ना चले। यूहन्ना कहते हैं, मैंने चार स्वर्गदूतों को पृथ्वी के चार कोनों पर खड़े देखा। मित्रवर, पृथ्वी के चार कोने चार दिशाएं हैं। ये चार दिशाएं उत्तर, पूर्व, दक्षिण तथा पश्चिम हैं। फिर यूहन्ना कहते हैं, जो पृथ्वी के चारों हवाओं को थामे हुए थे, कि पृथ्वी, समुद्र अथवा किसी वृक्ष पर हवा ना चले। दूसरे शब्दों में वो हवा को रोके हुए थे, पवन को रोके हुए थे। मित्रवर, परमेश्वर पवन को दंड के लिए प्रयोग करेंगे, यहां पर ये बात स्पष्ट होती है। भजनकार भजन 148 के आठवें पद में कहता है कि अग्नि, ओले, हिम तथा वाष्प व तूफानी हवाएं उसके वचन का पालन करते हैं। मित्रों, दंड की हवा को रोक दिया गया है। जब तक परमेश्वर अपना उद्देश्य पूरा ना कर ले, कोई भी अपने स्थान से नहीं हिल सकता। परमेश्वर का उद्देश्य क्या है? परमेश्वर का उद्देश्य यह है कि मानव जाति परमेश्वर की ओर अपना मन फिराए। यदि मनुष्य परमेश्वर की ओर मन फिराना बंद कर देगा, तो परमेश्वर इस संसार को समाप्त कर देगा, और इसलिए महाक्लेश काल के मध्य अन्य लोग परमेश्वर की ओर मन फिराएंगे और अनंत विनाश से बच जाएंगे। दंड द्वारा विशाल जनसमूह परमेश्वर के समीप आएगा, और इस प्रकार से ये दंड परमेश्वर का उद्देश्य पूर्ण करेगा। मित्रों, सूर्य के ताप का मोम और मिट्टी पर भिन्न भिन्न प्रभाव पड़ता है। ध्यान दीजिए, सूर्य की गर्मी का मोम पर और मिट्टी पर, दोनों पर भिन्न भिन्न प्रकार का प्रभाव पड़ता है। वो कोमल मिट्टी को कठोर कर देता है तथा मोम को पिघला देता है। इसी प्रकार परमेश्वर का न्याय व दंड है। परमेश्वर का भय मानने वालों को वो अपने समीप लाता है, किंतु हठीले व परमेश्वर विरोधी लोग उससे और भी दूर चले जाते हैं। हम इस बात को स्मरण रखें कि यूहन्ना रचित सुसमाचार के 5:24 के अनुसार महाकलेश युग का दंड कलीसिया के लिए नहीं है। वहां प्रेरित यूहन्ना स्पष्ट शब्दों में बताते हैं, प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले पर विश्वास लाता है, अनंत जीवन उसका है, वो मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है। मित्रवर, प्रेरित यूहन्ना फिलाडेल्फिया की कलीसिया में इस बात को स्पष्ट कर चुके हैं कि वह हमें इस घड़ी से बचाए रखेगा। ये कौन सी घड़ी है? ये वो घड़ी है जिसके विषय में यूहन्ना यहां चर्चा कर रहे हैं, अर्थात महाक्लेश युग का समय। हम पवित्र बाइबल को स्वयं से बात करने दें और उसकी सुने, तभी हम परमेश्वर के सत्य को जान सकेंगे और स्वयं को परमेश्वर की इच्छा के अनुसार तैयार कर सकेंगे। परमेश्वर पिता चाहते हैं कि हम अपने पापों से मन फिराएं और परमेश्वर की संतान होने का अधिकार प्राप्त करें और अनंत काल तक परमेश्वर के साथ उनकी संगति में जीवन व्यतीत करें। परमेश्वर पिता नहीं चाहते कि कोई भी व्यक्ति महाक्लेश में रहकर इस पृथ्वी के क्लेश को सहे। वो चाहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति आनंद के साथ परमेश्वर के साथ जीवन व्यतीत करे। आज समय है, यदि आप प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं तो परमेश्वर पिता आपको अपनी संतान के रूप में ग्रहण करते हैं और वो आपको अनंत जीवन देने का आश्वासन देते हैं। अब इन्हीं वचनों के साथ हम आज के अध्ययन को समाप्त करते हैं। प्रभु आपको आशीष दे और आपकी रक्षा करे। आमीन।
श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे हमारा हिंदी कार्यक्रम सत्य वचन। हमें विश्वास है कि आज के इस बाइबल अध्ययन से आपको लाभ मिला होगा। श्रोताओं, आज के कार्यक्रम से संबंधित यदि आपके मन में कोई सवाल या शंका है जिसके विषय में आप और अधिकारी से जानना चाहते हैं, तो हमें जरूर लिखें, हम आपकी सहायता करेंगे। पत्र व्यवहार के लिए हमारा पता है, कार्यक्रम सत्यवचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 226001, उत्तर प्रदेश। पता एक बार फिर से सुन लीजिए, कार्यक्रम सत्यवचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 226001, उत्तर प्रदेश। श्रोताओ, आप हमसे ईमेल के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। तो अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, प्रभु आपको आशीष दे।